आप सुन रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय HD स्मार्टकास्ट।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें। इलेक्शन को नहीं कर सकते कंट्रोल, चुनाव आयोग ने दूर किया संदेह। ईवीएम मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो टूक। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के जरिए से डाले गए वोटों का पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट के साथ पूर्ण सत्यापन करने को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए साफ किया कि वह चुनावों के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है और संवैधानिक अथॉरिटी भारत के चुनाव आयोग के कामकाज को निर्देशित नहीं कर सकता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, हम उन चुनावों को कंट्रोल नहीं कर सकते जो किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकरण चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाने हैं। अदालत ने कहा कि चुनाव निकाय चुनाव आयोग ने संदेह को दूर कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि वह महज संदेह के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकती। इस याचिका को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। ADR की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण के सवालों का जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि आप किसी विचार प्रक्रिया के बारे में पूर्व निर्धारित हैं, तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हम यहां आपके विचार को बदलने के लिए नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली के कुछ खास पहलुओं पर बुधवार को चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा था। साथ ही निर्वाचन आयोग के एक शीर्ष अधिकारी को दोपहर 2 बजे तलब किया था। विरासत टैक्स की बहस UPA काल में चिदंबरम ने शुरू की थी। राजीव गांधी ने क्यों खत्म किया था नियम? कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार संपत्ति के पुनर्वितरण की बात दोहरा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के ही सीनियर नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका का हवाला देते हुए विरासत टैक्स का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत पर टैक्स लगता है और यदि कोई मर जाता है तो उसकी 55% संपत्ति सरकार के पास जाती है। इसके बाद बची हुई 45% दौलत ही परिवार को मिलती है। उनके इस बयान को PM नरेंद्र मोदी और भाजपा ने मुद्दा बना लिया है। PM मोदी तो सीधे तौर पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस देश की जनता की संपत्ति लूटना चाहती है। वे लोग इस संपत्ति को लेना चाहते हैं जिन्होंने कांग्रेस को ही विरासत के तौर पर इस्तेमाल किया था। विरासत टैक्स पर चुनावी मौसम में बहस तेज हो गई है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में यह पहले भी था। यही नहीं, इसे खत्म करने वाले कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उनकी सरकार के दौर में वित्त मंत्री रहे VP सिंह 1985 में प्रस्ताव लाए थे और तब एस्टेट ड्यूटी टैक्स कहे जाने वाले इस कर को खत्म किया गया था। भारत में इसे 1953 में यह कहते हुए लाया गया था कि इससे आर्थिक गैर बराबरी का खात्मा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका और अंत में VP सिंह ने यह कहते हुए इस टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया कि यह अपने मकसद को पूरा करने में असफल रहा है। भारत में 1953 में एस्टेट ड्यूटी टैक्स के तहत किसी परिजन के गुजरने पर उसके बच्चों या पोते और पोतियों को मिलने वाली संपत्ति पर 85% तक का टैक्स लगता था। हालांकि इस टैक्स के दायरे में तब देश के सुपर रिच लोग ही आते थे। उस दौर में यह नियम था कि यदि किसी की अचल और चल संपत्ति 20 लाख रुपए से अधिक की है तो उस पर 85% तक का टैक्स लगता था। हालांकि उस दौर में किसी संपत्ति का 20 लाख रुपए मूल्य होना बड़ी बात थी। ऐसे में इसके दायरे में कम ही लोग आते थे। शायद यही वजह थी कि इससे सरकार को ज्यादा लाभ नहीं होता था। उस दौर में विरासत वाले इस टैक्स को लेकर यह भी नियम था कि यदि किसी व्यक्ति को लग रहा है कि उसकी सेहत खराब है और मृत्यु कभी भी हो सकती है तो वह गिफ्ट नहीं दे सकता। इसके अलावा मृत्यु से 2 साल पहले गिफ्ट में दी गई संपत्ति पर भी टैक्स का प्रावधान था। इसकी वजह यह थी कि टैक्स बचाने की कोशिशों को रोका जा सके। फिर भी इससे कमाई बहुत कम थी। इसके अलावा गैर बराबरी दूर करने वाले दावे भी गलत साबित हुए थे। गौरतलब है कि इस टैक्स को वापस लाने की बहस पी चिदंबरम ने 2013 में ही शुरू कर दी थी। हमारे चुनाव में इतनी दिलचस्पी क्यों? एस जयशंकर ने खोली पश्चिमी मीडिया की पोल। भारत का आम चुनाव एक पर्व की तरह होता है। इस चुनाव को कवर करने के लिए भारत के साथ साथ विदेशी मीडिया भी उतनी ही लालायित रहती है। इस बार भी आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। 7 चरणों में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब भारत के मतदाता दूसरे चरण के मतदान के प्रति अपना रुख कर रहे हैं। देश के इस चुनाव को कवर करने के लिए कई विदेशी मीडिया भारत आ रही हैं। कई लेख भी लिखे जा रहे हैं। पूरी तरह से ग्लोबल हो चुके इस आम चुनाव की कवरेज को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी मीडिया के रोल पर बेबाक टिप्पणी की है। एस जयशंकर ने भारतीय लोकतंत्र में हस्तक्षेप के लिए पश्चिमी मीडिया को लताड़ लगाई है। विदेश मंत्री ने कहा कि पश्चिमी मीडिया चुनाव में खुद को राजनीतिक खिलाड़ी मानती है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को हैदराबाद में एक मंच को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, मुझे पश्चिमी प्रेस से बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, और अगर वे हमारे लोकतंत्र की आलोचना करते हैं तो ऐसा इसलिए नहीं है, है क्योंकि उनके पास जानकारी की कमी है। वे ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि वे हमारे चुनाव के राजनीतिक खिलाड़ी हैं। जयशंकर ने पश्चिमी मीडिया में छपे एक लेख का जिक्र करते हुए कहा, जिसका लबोलुआब यह था कि भारत में इतनी गर्मी में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं। जयशंकर ने कहा, मैंने वह लेख पढ़ा। मैं उन्हें कहना चाहता था कि उस गर्मी में मेरा सबसे कम मतदान आपके सबसे अच्छे दौर में सबसे अधिक मतदान से अधिक है। कर्नाटक के सभी मुसलमानों को मिल रहा OBC आरक्षण, केंद्र सरकार ने उठा दिया सवाल। लोकसभा चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। PM नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह SC, ST और OBC का हक मारकर मुसलमानों को देना चाहती है। इस बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का बयान आया है, जिसमें उसने बताया है कि कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है। आयोग ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि कर्नाटक में मुस्लिमों की सभी जातियों और समुदायों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जा रहा है। हंसराज अहिर ने कहा कि हमने इसे लेकर कर्नाटक सरकार से पूछा था कि आखिर किस आधार पर यह कोटा दिया जा रहा है। इस पर हमें कोई सही स्पष्टीकरण नहीं मिला है। आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर की ओर से जारी बयान में कहा गया है, कर्नाटक सरकार के नियंत्रणाधीन नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण हेतु कर्नाटक के सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों को OBC की राज्य सूची में शामिल किया गया है। इसके आगे लिखा गया है, कर्नाटक सरकार के पिछड़ा वर्ग विभाग ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को लिखित रूप से बताया है कि मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय न तो जाति हैं और न धर्म हैं। कर्नाटक में मुस्लिमों की आबादी 12.92% है। राज्य में मुस्लिमों को धार्मिक अल्पसंख्यक माना जाता है। यही नहीं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्नाटक में मुस्लिमों को मिलने वाले आरक्षण की नियमावली के बारे में भी विस्तार से बताया है। आयोग ने बताया कि कर्नाटक में कैटेगरी 1 के तहत 17 मुस्लिम जातियों को शामिल गया है, जो 4% OBC कोटे के तहत आवेदन कर सकती हैं। इसके बाद कैटेगरी 2 में 19 मुस्लिम जातियां शामिल हैं और कुल मिलाकर 393 जातियां इस सूची का हिस्सा हैं। इसके तहत 15% OBC कोटा मिलता है। इसके बाद कैटेगरी 2B के तहत 4% आरक्षण मिलता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय की सभी जातियां शामिल हैं। उन्हें मेरी जगह लेने दो। स्टोइनिस ने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने पर तोड़ी चुप्पी। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने आईपीएल 2024 के 39वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके में तूफानी सेंचुरी ठोकी। लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी का हिस्सा स्टोइनिस ने 63 गेंदों में 13 चौकों और 6 छक्कों की बदौलत नाबाद 124 रन की पारी खेली। एलएसजी ने चेन्नई के मैदान पर 6 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की। लखनऊ ने 211 रन का विशाल टारगेट चेज किया। स्टोइनिस ने आईपीएल में पहली सेंचुरी जड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने पर तुप्पी तोड़ी। बता दें कि पिछले महीने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए ने खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में स्टोइनिस को शामिल नहीं किया था। स्टोइनिस को कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद कोई खास गम नहीं है। वह इस बात से खुश हैं कि उनके देश के युवा खिलाड़ियों को मौके मिल रहे हैं। उन्होंने एलएसजी वर्सेस सीएसके मैच के बाद कहा, मेरे कोच ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, यह मुझे पहले ही पता चल गया था। मुझे लगता है कि युवा खिलाड़ियों का टीम में आना और उन्हें मेरी जगह देना बहुत अच्छा है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से कोई दिक्कत नहीं। हालांकि 34 वर्षीय स्टोइनिस ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए अपना योगदान देने के लिए उत्सुक हैं। जून में वेस्टइंडीज और यूएसए में T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन होना है। उन्होंने कहा, लेकिन खेल के मोर्चे पर मैं स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि वहां रहूं और अपना योगदान दूं। यह हमारे लिए और विशेष रूप से मेरे लिए इस प्रतियोगिता आईपीएल का होना बहुत भाग्यशाली है। यही कारण है कि मैं इसे इतना पसंद करता हूं। गौरतलब है कि एलएसजी द्वारा सीएसके के खिलाफ पहले ओवर में क्विंटन डिकॉक 0 के आउट होने के बाद स्टोइनिस को तीसरे नंबर पर प्रमोट किया गया। उन्होंने कहा, जल्दी उतरना और पारी खेलना अच्छा है, लेकिन मैं मध्यक्रम में सेटल हो चुका हूं। इस प्रतियोगिता में मुझसे कई बेहतर ओपनिंग बल्लेबाज मौजूद हैं, इसलिए मैं उन्हें अपना काम करने दूंगा।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT Smartcast की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HT Smartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HT Smartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.hdsmartcast.com।